श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा मेरे बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा,
आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा,
आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, बिन सब मंदिर है सुने,
तुम बिन सब
मंदिर है सुने, आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा,
राम रहीम
तुम सारे जगत के, सुन मन में वास करो तुम, सुन मन में वास करो बस जाओ बाबा,
घर घर में बस जाओ बाबा,
घर घर में बस जाओ बाबा,
घर घर में बस जाओ बाबा,
आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, सब मंदिर है सुने, आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, परमात्मा तुम सारे जगत के, रहीम तुम सारे जगत के,
राम रहीम तुम सारे जगत के,
सुन मन में वास करो तुम,
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 घर घर में बस जाओ बाबा,
घर घर में
घर में बस जाओ बाबा,
घर घर
जय श्री साईराम। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, यूं समझिएगा कि अनंत काल पीछे जा रहे हैं हम। कहते हैं सबसे पहले जब जीव धरती पर आए तो पानी में आए, इसलिए हमारे 10 अवतारों में शुरुआत करते हैं मत्स्य अवतार से। जीव में बदलाव आया, धीरे धीरे धरती पर रहने वाले कीड़े मकोड़े बन गए, धीरे धीरे वही कीड़े मकोड़े आ गए जिनके पशु बन गए, पक्षी बन गए। कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कहते हम इवॉल्व हुए हैं। कहते हैं पहले जब जानवर होते थे ना, जैसे आज भी होते हैं, तो खाना खाने के लिए वो एक दूसरे को मारते थे। उसी प्रकार से जब मानव, आदिकाल का मानव, जो कपड़े भी नहीं पहनता था, गुफाओं में रहता होगा या जंगलों में रहता होगा, बीर वन में रहता होगा, उसको नहीं मालूम था खाना कैसे बनाया जाता है, उसको नहीं पता था अनाज कैसे लगाया जाता है। जानवरों की भांति वह भी भोजन की तलाश में रहता था। कहीं मैंने सुना है कि एक बार एक वानर ने अपने हाथों में, माफ कीजिएगा, हाथों के बजाय किसी पशु की हड्डी उठा लिया, उससे झगड़ा कर रहा था, उससे लड़ाई कर रहा था, तो उसको उस हड्डी का प्रयोग करना समझ आ गया कि हड्डी को उठा के मैं अपना बचाव कर सकता हूं, एक टूल के रूप में, औजार के रूप में। हो सकता है धीरे धीरे इंसान ऐसे औजारों को प्रयोग में आने लग गया। अनंत काल में लोग औजार कैसे बनाते थे, लकड़ी ले लेते थे, लंबी सी डंडी, एक बांस, समझ में आया शिकार करना है तो बांस में थोड़ा अगर नुकीलापन लेके आ जाए तो पशु को मार सकते हैं। बदलाव आया, औजार का प्रयोग कैसे करें, औजार कैसे बनाएं, वो धीरे धीरे औजार बनते गए, अलग प्रकार के औजार बन गया, धीरे धीरे गुफाओं की जगह झोपड़ी में रहने लग गया। आज इंसान महलों में रहता है, बड़ी बड़ी इमारतों में रहता है। जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, कभी आपने विचार किया? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मानव या इंसान को औजारों का इस्तेमाल करना आता है जब पशुओं को नहीं आता। उनकी क्षमता बढ़ती गई, उनकी तकनीक का विकास हुआ। आज देखिए हमारी तकनीक का विकास कितना हो चुका है, टेक्निकल प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है। धरती जो क्या, चांद पे भी इंसान चला गया, चांद पे होकर वापस भी आ गया। व्हाट एन अचीवमेंट। अब विचार कीजिएगा, अगर आज के युग में आप एक कार में जा रहे हैं, कार कैसे चल रही है, आपके जन्म से पहले किसी ने यातायात के साधन बनाए होंगे, किसी ने व्हीकल डिजाइन की होंगी, किसी ने इंजन बनाया होगा, किसी ने उसको चलाने का तरीका बनाया होगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, पहिया, व्हील्स। कभी आपने कल्पना करी, जिस व्यक्ति ने पहिए का निर्माण किया होगा पहली बार, आज पहिया हमारे कितने प्रयोग में आता है। बाईसाइकिल हो, ट्राईसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, या आपके एयरप्लेन हो, सब में पहियों का प्रयोग होता है। सारी मशीनरी में पहिए जैसे यंत्र लगे होते हैं। कितना बड़ा योगदान रहा होगा उस व्यक्ति का, या उस सभ्यता का, या उस देश का, या उस समय की मानव जाति जो भी होगी, पहिए का उन्होंने आविष्कार किया। अगर पहिया ना होता आज हम कहां होते, हु नोज, कौन जानता है। हाँ, हमारे पांच तत्व हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। पानी बरसता है, जल की अनुभूति हुई, नदियों में जल बहते हुए देखा, आकाश में हमेशा देखते ही हैं, धरती पे रहते हैं, वायु के कारण सांस लेते हैं। ये चार चीजें तो हमें हमेशा मिलती थी, लेकिन अग्नि, अग्नि कहां से आई, कैसे प्रज्वलित हुई, उसका प्रयोग करना कैसे सीखा इंसान ने, ना विचार कीजिएगा। अग्नि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, बहुत बड़ी बात है ये। हो सकता है कभी मानव से कोई मांस का टुकड़ा या कोई भोजन अग्नि में गिर गया हो, पक गया हो, उसने उठा के खाया और बाद में लगा वाओ क्या स्वाद आ रहा है, अग्नि का प्रयोग करना आ गया। आज अगर अग्नि ना हो या अग्नि तत्व ना हो, आप कैसे जिएंगे, विचार कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं उस सभ्यता को जिसने अग्नि का प्रयोग करना हमें सिखलाया, धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिन्होंने पहिए का आविष्कार किया, धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिन्होंने कपास से कपड़े बनाने सीखे, कपास से धागा बनाया, धागा से वस्त्र बनाए, वस्त्र से परिधान से कपड़े बनाए, हमारे ड्रेसेस बनाई, हमारे ट्राउजर्स बनाई, हमारे पैंट बनाई, हमारी पतलून बनाई, हमारी कमीज बनाई, एक तरीका बताया। धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने औजार बनाए, धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने पत्तल में पहले खाना खाते थे, पत्ते पे रख के पत्ते के दर्जे उन्होंने तशरी बना दी, पत्ते को जोड़ जोड़ के प्लेट बना दी। आज स्टील की प्लेट है, एल्यूमिनियम की प्लेट है, कांच की प्लेट है आपके पास, मिट्टी की प्लेट है आपके पास, किसी ने मटका बना दिया, उसी मिट्टी को पकाकर मटका बना दिया जिसमें पानी ठंडा करते हैं, उसी मिट्टी से बर्तन बने जिसमें खाना बनाने लग गए। तो विचार कीजिएगा, अगर वो लोग हमारे जीवन में ना आए होते, हमारे जीवन से पहले ना आए होते, यूं कहना चाहिए, आज हम इस स्थान पे ना होते, उन लोगों ने अगर इस आविष्कार में अपना योगदान ना दिया होता तो आज हम यहां पर ना होते, या आज हमारे पास ये चीजें उपलब्ध ना होती जो है। Just think about it, विचार कीजिएगा। तो आप क्या ये नहीं सोचते कि हमें कभी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए, उनकी बदौलत आज हमारे पास सब कुछ है। आज भी आविष्कार जारी है, आज भी इंप्रूवमेंट हो रही है बेहतर के लिए, आने वाले युग में, आने वाले समय में जो लोग आएंगे आज से 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, 1000 साल के बाद, वो हमको धन्यवाद देंगे, चाहे हमने कुछ भी ना किया हो, लेकिन आज के युग के मानव को धन्यवाद देंगे, उनका आभार प्रकट कर गए कि उनके कारण आज वो कहां पहुंच गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में लोग चांद में जाके, मंगल में जाके रहे, हो सकता है, विचार कीजिएगा। पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजरती गई, आविष्कार बंद नहीं हुए, मानव लगा रहा अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, नई नई खोजें करता रहा, नई नई चीजें बनाता रहा, नई नई तकनीक का प्रयोग किया। और ये भी कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ये जो समय चल रहा है आज का, इस समय कई फसलें पक जाती हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास, नया अन्न आता है, पहला अन्न आता है उसको लोग अग्नि में डाल देते हैं, अग्नि को धन्यवाद देते हैं। क्यों भाई? कहते हैं अग्नि देवताओं का मुख है। अगर किसी देवता तक आपने कोई चीज पहुंचानी है तो अग्नि में देख के प्रार्थना कर सकते हैं। आपने हवन तो किया होगा, जब आहुति देते हैं मंत्र उच्चारण करके बोलते हैं स्वाहा, स्वाहा का अर्थ क्या हुआ? स्वाहा एक देवी का नाम है जो आपकी आहुति को आपके हवन कुंड से उठाकर परमात्मा तक या जिस निमित्त देवता के लिए आप हवन कर रहे हैं वहां तक पहुंचाती है। विचार कीजिएगा, जरा आप सोचिएगा, यूं समझिएगा कि स्वाहा एक कुरियर पर्सन है। जैसे आप कोई अपना लेटर कुरियर करते हैं, कुरियर का ड्राइवर आता है आपका सामान आपके घर से पिक करता है, जाके डिलीवर कर देता है। उसी प्रकार से स्वाहा एक ऐसी देवी है या कुरियर की देवी है जो आपके आपकी आहुति को परमात्मा तक पहुंचाती है। ये भी हो सकता है लोगों ने सोचा हो अग्नि देव से हमें इतना कुछ मिलता है, अग्नि के द्वारा ही हम देवताओं तक पहले अन्न को दें। आज देवताओं की कृपा है, इंद्र की कृपा है, बरसात हो रही है, वायुदेव की कृपा है, सभी देवताओं की कृपा है, आज हमारे पास सब कुछ है, हमें उनको देना चाहिए, अब हर प्रकट करना चाहिए। अब जरा विचार कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं पूर्वजों का सम्मान करना, पूर्वज को होना एंटेस्टर्स। सम्मान क्या है? रिस्पेक्ट। आभार क्या है? बीइंग ग्रेटफुल। क्या हमें अपने पूर्वजों को आदर सम्मान देना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए या नहीं? विचार कीजिएगा। अब आप ये सोचिएगा, एक माता पिता होते हैं जो अपनी संतान के लिए सब कुछ करते हैं, खुद भूखे रह जाएंगे, अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे, हमेशा प्रयास करेंगे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज लें। बच्चे चाहे मां बाप की कदर करें या ना करें, लेकिन मां बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहेंगे। कई मां बाप जैसे भी करते हैं, भाई मेरे बच्चे होंगे, बच्चों के लिए मकान बना दूं, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा रख दूं बैंक के अंदर, बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा, बच्चे के डेवलपमेंट में काम आएगा, बच्चे के करियर में काम आएगा। वो हर चीज में योगदान देते हैं कि मेरे बच्चों को कष्ट ना हो। क्या हमारा उनको आदर सम्मान देना बनता है या नहीं बनता? आज हमारे पास शरीर है, उसका कारण यह है कि हमारे माता पिता ने हमारे को शरीर दिया है। शरीर दिया, आत्मा कहीं से भी आई हो, आत्मा तो अपनी यात्रा पर है, जन्म जन्मांतर तक यही आत्मा कई अक्षरी धारण करेगी, अंत में परमात्मा तक पहुंची जाएगी, सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में। लेकिन कर्म करने के लिए हमारे को शरीर चाहिए, बिना शरीर के आप कर्म नहीं कर सकते, और बिना कर्मों के आपकी सदगति नहीं हो सकती। तो आभार प्रकट करना चाहिए माता पिता को जिन्होंने आपको शरीर दिया, और खासकर अपनी माता का आभार प्रकट करना चाहिए जिसने आपको 9 मास तक अपनी कोख में रखा। 9 मास तक प्रत्येक पल अपनी कोख में पलते हुए बच्चे पर ध्यान रखती रही, मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा वहां से निकल जाए कि बच्चे को कष्ट ना हो, मैं खुश रहूंगी, बच्चा खुश रहेगा, तंदुरुस्त होगा, अच्छा होगा, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं पितृ पक्ष के समय आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करें। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? लव एंड रिस्पेक्ट। किसी पंडित को जाके भोजन कराने से श्राद्ध नहीं हो जाता। हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने हमको ये शरीर दिया, उनके कारण आज है हम हैं। शरीर है, संस्कार है हमारे, धन संपत्ति उन्होंने दी है, पढ़ाया लिखाया उन्होंने हमारे को, हमारा ख्याल रखा है। कम से कम भाई साल में कुछ दिन तो निकाल के उनको सम्मान दे दो। चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद एक आत्मा को मानव का शरीर मिलता है। मानव का शरीर और मानव की सोच दोनों मिलती हैं। चौरासी लाख, और हम इस जन्म को अगर खराब कर दे, वेस्ट कर दे, व्यर्थ कर दे, गंवा दे, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। हो विचार कीजिएगा जरा आप। तो ये श्राद्ध जो है हम पूर्वजों को याद करके उनको शांति देने का प्रयास करते हैं। अगर उनके अंदर कुछ वासनाएं रह गई हों एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय शरीर तो मर जाता है, घर वाले आपके शरीर को उठा के आग में दे देंगे, जला देंगे, भस्म कर देंगे, राख कर देंगे, लेकिन आपकी जीवात्मा, आपका जो मन है वो नहीं मरता। अगर वासनाएं बहुत इंटेंस हैं, बहुत तीव्र हैं, बहुत ज्यादा हैं, वो आपको जन्मों जन्मांतर तंग कर सकती हैं। मरने के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलती, भटकती रहती है अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु, लेकिन शरीर ना होने के कारण इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके पूर्वज भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं? तो श्राद्ध एक तरीका बनाया गया, एक माध्यम बनाया गया, एक प्रोसेस बनाया गया। जब आप बैठ के अपने पूर्वजों को आमंत्रण दें, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं देना आपने उनको, कोई ईमेल नहीं करना, कोई फेसबुक में नहीं जाना, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं देना आपको, कोई एसएमएस नहीं देना आपको, दिस इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। श्राद्ध के समय आप शांति से बैठ के अपने मन में अपने पूर्वजों को जो गुजर गया उनको बुलाएं, उनका आमंत्रण करें, उनको निमंत्रण दें। आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क है। आमंत्रण है यू ऑल आर इनवाइटेड, निमंत्रण है वन टू वन कह रहे भाई आपके बिना काम चलेगा ही नहीं, यू हैव टू कम। आप उन्हें बुलाएं, उन्हें अपने जैसे आप उनको याद करेंगे, शायद उनका शरीर ना हो लेकिन सटल बॉडी नजर आएगी आपको, सूक्ष्म नजर आएगा आपको, उनकी तस्वीर आपके दिमाग में छा जाएगी, उनको आसन दें, अपने हृदय में बिठाएं। The form, the name may have vanished, but not the subtle body. Unko prem arpit karein. Offering your gratitude in contentment. Abhar prakat karke unko santosh dein. विचार कीजिएगा। हमें ये कब करना चाहिए? ये एक पक्ष आता है इस समय अभी चल रहा है जो सितंबर अक्टूबर में दशहरे से पहले जो अमावस होती है उसे कहते हैं महालया पक्षम की अमावस, उसे 14 दिन पहले शुरू हो जाता है। महालया पक्षम, महालया पक्षम का मतलब है द पीरियड ऑफ द ग्रेट असेंबली। इस समय पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। तर्पण क्या होता है? तर्पयामी से आया वर्ष, तृप्ति से आया शब्द तर्पयामी, तृप्ति, तृप्ति क्या है? तृप्ति से आया मतलब कि कंटेंटमेंट, नो मोर वांट, नो मोर डिजायर। तो अपने पूर्वजों को आप कहते हैं आई ऑफर कंटेंटमेंट टू यू, मैं आपको संतुष्टि ऑफर कर रहा हूं, कृपा इसे सब कीजिए, बी कंटेंटेड, संतोष में आ जाइए, संतोषजनक बन जाइए। इस थीम को लेके, इस पॉइंट को लेके, इस फोकल पॉइंट को लेके मंत्र बनाए गए। और ध्यान रहे जो पूर्वजों ने गलतियां की हैं वो आपको दोहरानी नहीं है, आपको उससे लेसन सीखना है, सबक सीखना है और अपने आप को संतोष देना कि मेरे को भगवान ने बहुत दिया, बहुत है मेरे पास, ताकि आपका जन्म भी ऐसे समापना हो जाए असंतोष में। विचार कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने पूर्वजों को प्रेम अर्पित करना। लव इज द सोर्स, लव इज द पार्थ, लव इज द गोल। प्रेम ही सूत्र है, प्रेम ही यात्रा पथ है और प्रेम ही लक्ष्य है। केवल प्रेम, 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 अटूट प्रेम लेके आइए हृदय में और अर्पित कीजिए, आपका श्राद्ध पूर्ण होगा। जय श्री सारा।